सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ॐ शांति शांति शांति।
स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में आज एक दिवसीय आकस्मिक मेरा आगमन हुआ, क्योंकि महाराज जी थोड़ा बाहर चले गए हैं, नासिक, भगवान शिव की नगरी वो भी है त्र्यंबकेश्वर, तो मुझे आना हुआ। सोचा तो आप सबको भी मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। महाराज जी प्रवचन स्वाध्याय तो चल ही रहा है, उसका तो क्रम ही है, लेकिन प्रवचन में महाराज जी ने शुरू किया है प्रश्नोपनिषद। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यही एक दिन का ले लूं या एक दिन का आकस्मिक दूसरा कोई प्रवचन ले लूं, क्योंकि महाराज जी आके फिर वही शुरू करेंगे ही, मैं जानता हूं महाराज जी का वो। तो बताओ क्या आप लोगों की इच्छा है, हाँ कुछ दूसरा ले लेना, हाँ कुछ स्वतंत्र है, कुछ स्वतंत्र ले लें, क्योंकि महाराज जी की परंपरा हम लोग जानते हैं, क्योंकि इलाहाबाद कुंभ में महाराज जी प्रवचन कर रहे थे गीता जी पे, शायद 13वां अध्याय था ना चतुर्भाई, 13वां अध्याय। तो महाराज जी को किसी काम के लिए कोई आ गया मिलने, तो हमें बोल देते थे जाकर के आप कर लो प्रवचन, तो प्रवचन करके हम बढ़े, फिर अगले दिन महाराज जी फिर वहीं से पीछे शुरू कर देंगे। तो समझ लेना 2 महीने में 13 अध्याय पूरा हो नहीं पाया, बीच बीच में होता रहा, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी लगेगा शुरू में जो भी है नाम आदिकरण का ही है, प्रश्नोपनिषद में क्या है ऋषियों के नाम, उनका परिचय, और वे जाते हैं गुरु के पास है। तो कहते एक साल तुम यहां रहो, एक साल तुम यहां रहो, और एक साल के बाद यदि मुझे आएगा, ये भी शर्त देते हैं, यदि मुझे तुम्हारे प्रश्नों का जवाब आएगा तो मैं जवाब दूंगा। ऐसा आता कहां पे, प्रश्नोपनिषद में। और 2-3 श्रुतियों में, 2 श्रुतियों में तो केवल, 1 श्रुति में तो केवल उन ऋषियों के नाम ही हैं, जो जो ऋषि सुकेशा भरद्वाज के पुत्र सैव्य आदि ये सब ऋषि गए थे, और वहां से कहा कि तुम ब्रह्मचर्य, ध्यान देना शर्त भी वहां बताया कि आप लोग यहां तपस्या पूर्वक कैसे रहना है। यदि व्यक्ति गुरुकुल में जाए, गुरु के सानिध्य में जाए, तो अपनी सुविधा न खोजे बल्कि क्या करे, तप करे। और तप क्या है, जल में खड़े होकर के हाथ ऊपर कर खड़े रहना, अथवा चारों तरफ आग लगा के बैठ करके तपना। कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति मिले उस परिस्थिति को हंसते हंसते सहना, कोई शिकायत न करना, इसका नाम क्या है? तप है। तप का ही दूसरी भाषा में तितिक्षा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तितिक्षा। इन्हें हम लोग बताए कंडीशन क्या पालन करते हैं क्या? जाते ही सुविधा वाला कमरा चाहिए। कौन सा कमरा? सुविधा वाला कमरा चाहिए। अच्छी बात, हम लोग उसी में है। आज बहुत गर्मी है, एसी वाले के बिना तो चलेगा नहीं काम, मुंबई के रहने वाले लोग हैं। लेकिन यहां कहते हैं सीधे तपस्या, तपसा। क्या होना चाहिए जीवन में? तप होना चाहिए। दूसरा शर्त रखना ब्रह्मचर्येण। दूसरी कंडीशन क्या है? ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य तो रहता ही रहता है। दो तरह का ब्रह्मचर्य है, एक तो जो ब्रह्मचर्य संसार में प्रसिद्ध है, और दूसरा ब्रह्मचर्य आपकी ब्रह्मगई आचरति चित्त सब ब्रह्मचारी है। जब ब्रह्म में ही जिसका चित्त रमण करे, लेकिन हमारा चित्त कहां रमण करता है? ब्रह्म में, खाने पीने में। पता कर लेते हैं आज रसोई में क्या बनने वाला है। सही बताऊं, हम लोग भी जाके रसोई से भंडारी से आज क्या माल बन रहा है तो कहेगा क्यों महाराज का, उसी हिसाब से भूख क्रिएट करेंगे ना। यदि माल बढ़िया बनेगा तो बाहर कुछ खाएंगे नहीं, और थोड़ा भूख को संभाल के रखेंगे। या भूख अंदर से, भूख भी देखो भोजन का नाम सुनकर के भूख भी पैदा होती नहीं होती है। यदि आपके मनोनुकूल भोजन मिल जाए तो अंदर से भूख क्या हो जाती है? तुरंत लग जाती है। भूख न हो तो भी लग जाती है। तो आपका चित्त खाना पीना, अन्य संसार के मार्केट में जाना, कुछ सामान खरीदना, इसमें हमारी चित्त की वृत्ति जरा सा भी रमण न करे। कहां रमण करे? एक चिंतन ही रहे किसका? उस ब्रह्म का। तो ब्रह्मचर्य दूसरी कंडीशन है, उस ब्रह्मचर्य में हम जीवन जिए, हमारा चित्त अनात्म विषयक न होवे, कहां होवे? आत्म विषयक ही बना रहे। ऐसी प्रसंग में आपने सुना भी होगा, देखो कोई कंडीशन होती है। सुखदेव महाराज कितने साल गर्भ में रहे? सुना ने? कितने साल? 12 साल। और गर्भ से जब बाहर निकले तो क्या किए? चले गए। कभी कभी लगता है क्या काल्पनिक कहानी है क्या? तो देखो आध दैविक में तो शर्त नहीं मान, मतलब आध दैविक में जो जैसा लिखा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना है, लेकिन थोड़ा चिंतन करो तो बच्चा 12 साल का 12 दिन भी टाइम से ज्यादा रह जाए। अरे मां के पेट की एक तो क्या होनी चाहिए? लिमिटेशन है, सीमा है। इतना बड़ा बच्चा कैसे रह सकता है 6 फुट की मां में? मान लो 6 फुट की होगी, वैसे 6 फुट की कमी होती है, 5 ही फुट की होगी, 5 फुट 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच की मां होगी, उसका वो गर्भाशय की थैली होगी, उससे बच्चा जो पैदा होए, पैदा होते ही क्या कर देवे? चल देवे। ये तो बड़ी सी अजीब बात हो रही है ना? नहीं आपको लगता है? तो इसका तात्पर्य क्या है? तो कहा कि गुरु का जो आश्रम की सीमा है ना, वह गुरु का गर्भ है। देखो हमारा 2 तरह से जन्म होता है, एक मां के गर्भ से और दूसरा किसके गर्भ से? गुरु के गर्भ से। गुरु का थोड़ा पेट भारी है, ठीक है? मां के गर्भ में 1-2 बच्चे आ सकते हैं। कितने आएंगे? 1-2 बहुत हो गया तो 3, बहुत हो गया तो 3। और गुरु के गर्भ में सैकड़ों बच्चे आ सकते हैं। ध्यान देना कितने बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि जो आश्रम की एक सीमा है, गुरु की जो देख रेख है, वही गुरु का क्या है? गर्भ है। उस गर्भ में सुखदेव जी महाराज कितने साल रहे? 12 साल। उनको दीन दुनिया की कोई खबर थी नहीं। मतलब गुरु जिस रास्ते को बतावे, जो चिंतन करने के लिए देवे, जो होमवर्क देवे, पूरी तरह से शिष्य वही काम करता रहा। तो हम भी कहां रह रहे हैं? अपनी मैं को हटा करके अपनी मैं को गुरु की मैं के साथ मिला देना। भाई बच्चा क्या है? यदि गुरु मां के गर्भ में है तो बच्चा अपनी चलाता है कि अपनी मैं को मां की मैं के साथ मिला करके मां के अनुसार चलता है? बच्चे का अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है। बच्चा और मां दोनों क्या हो जाते हैं? एक ही हो जाते हैं। तो ऐसे शिष्य गुरु के सानिध्य में रह करके गुरु के साथ इतना तादात्म्य कर लेवे कि उसका अपना स्वयं का मैं क्या हो जाए, समाप्त तो हो जाए, और उसका मैं किसके मैं के साथ मिल जाए, गुरु के मैं के साथ क्या हो जाए, मिल जाए। तो 12 साल तक यदि कोई ऐसी साधना करे तो इतना संस्कार 12 साल का गहरा हो जाता है कि जो गुरु के मैं का निश्चय है वही मैं का निश्चय किसका हो जाएगा, शिष्य का भी हो जाएगा। और फिर शिष्य को जो बोध हुआ तो यह मेरा घर है, यह मेरा आश्रम है, मेरे गुरु हैं, मेरा शिष्य है, ये सारी वृत्तियों को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, और पूरा विश्व ही उनका अपना एक संसार हो गया। तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या नाम है, मतलब सुखदेव जी महाराज गुरु के आश्रम में रहे तो ब्रह्मचर्य माने क्या हुआ, चित्त की वृत्ति आश्रम के बाहर किसी भी भोग विलास पदार्थों में जरा सा भी गई नहीं, वह अपने आप में उसी में रमण करती रही। तो ऐसा हमारा ब्रह्मचर्य होवे, ठीक है, ये भी आप रह लिए। लेकिन अगला कंडीशन शर्त है श्रद्धा। क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है। भले आप लोग कहो महाराज जी मैं आप पे श्रद्धा तो करता हूं, करते नहीं करते आप लोग श्रद्धा करते नहीं करते, इन्हें श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है कि बिना पूछे, जिसे हम ही आपसे कहें चलो चलो मेरे साथ चलना है, जिसके ऊपर श्रद्धा करना है, चुपचाप बिना कुछ व्यवस्था किए कहां चलना है, इसी अवस्था में जिस हाल में जैसे हो वहां चुपचाप कर दिए। इतना अटूट विश्वास है कि हम यदि गुरु के सानिध्य में जा रहे हैं तो गुरु हमारा हित ही सोचेंगे, हमारा अहित कभी भी नहीं सोचेंगे, और उनकी एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाए। तो श्रद्धा होवे, तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे क्या करता है, श्रद्धा करता है, और जहां जाना हो जिस अवस्था में जाना हो वह बच्चा चुपचाप वहां क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। कुछ कंडीशन रखता है, टिकट लिया कि नहीं लिया, खाने की व्यवस्था किया या नहीं किया, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, माँ की। माँ ने जो कहा, ये तेरे पिता, ये तेरा घर, बच्चे ने कोई तर्क किया क्या, तुरंत उसको मान लिया। उसी प्रकार से हमारी यदि श्रद्धा किसके ऊपर हो जाए, गुरु पे हो जाए, तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान निश्चित ही हमारे जीवन में उतर जाएगा। वो भी कितने साल तक, वहां बता दिया 12 साल तक, लेकिन यहां तो कम से कम बेचारे पिपलाद मुनि ऐसे गुरु हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं, एक साल रह लो बस। कितना, संवत्सर पर्यंत एक साल रह लो, और एक साल ही इसी टूट निष्ठा के साथ यदि आपने रहा तो स्वाभाविक ही हमारी भी स्थिति ब्रह्म में हो जाएगी, ये निश्चय जान लेना। फिर तुम लोग आना यथा कामम, एक साल रहने के अंतर जैसी इच्छा हो आओ और अपने प्रश्नों को पूछो। लेकिन ये भी कंडीशन, यदि विज्ञास्याम, यदि मैं जानता होऊंगा तुम प्रश्नों के जवाब को, हम लोग तो क्या कहेंगे, सोचेंगे, वो बुद्धि है ना, चालाक बुद्धि, कि पता लगा एक साल सेवा किया और गुरु जी से मैंने प्रश्न पूछा और गुरु जी को जवाब नहीं आया, तो एक साल की हमारा सेवा क्या हो गई, बेकार चली गई। तो इसी सेवा करने से फायदा भी क्या होगा, हम हमेशा चालाक बुद्धि अपनी करते। लेकिन गुरु जी ने सीधे कह दिया, यदि मैं जानूंगा तो सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, यदि नहीं जानूंगा तो राम ही जाने। इस तरह से पूरा यहाँ पे बहुत बढ़िया चर्चा किया है। तो फिर एक एक ऋषि आते हैं और किस क्रम से प्रश्न पूछते हैं, देखना ऋषियों का परिचय। पहले मंत्र में ऋषियों का परिचय जिस क्रम से दिया गया है, प्रश्न का जवाब उसके उल्टे क्रम से दिया गया है, यह भी बहुत बड़ी बात है। जब आप यहां एक हमारा उपनिषद जो है ना, केवल आपको कोरे ज्ञान नहीं सिखाता है, आपके जीवन को व्यवहार में कैसे जीना पड़ेगा यह भी सिखाता है। जब आप किसी का कहीं परिचय देने जाओ किसी के सामने, तो सबसे पहले परिचय किसका देना है, बोलो भाई, अपना तो देना ही है, लेकिन अपने से बड़े का परिचय है, फिर दूसरे छोटे का, फिर तीसरे का, फिर इस तरह से एक परिचय देना है। एक घर में बहुत बढ़िया रहा प्रसंग, मैं बताऊं आपको। एक महात्मा थे, दो महात्मा साथ जा रहे थे कहीं, ओंकारेश्वर गए, अन्नपूर्णा आश्रम है वहां पे गए। वहां जाने के बाद कहा कि ये महात्मा मेरे साथ आए हैं, ये महात्मा मेरे साथ आए हैं। मंजुलेश्वर से कहा, तुरंत उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आया, तुम मेरे साथ आए हो। ध्यान देना, ये मेरे साथ आए हैं, इसका मतलब मैं क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये मेरे क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक है ना भाई, ये मेरे साथ आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या हुआ, बड़ा है मेरे, छोटे है। अरे मैं इनके साथ आया, ये बोलना चाहिए। एक गृहस्थी थे, बहुत बढ़िया थे, भगत थे आप लोगों जैसे। हमने इसे पूछा कि भाई मम्मी पापा तुम्हारे पास ही रहते हैं क्या, मम्मी पापा तुम्हारे पास ही रहते हैं क्या? तुमने कहा महाराज जी आप गलत पूछ रहे हो, मम्मी पापा के साथ मैं रहता हूं। ध्यान देना, एक ही प्रश्न है लेकिन प्रश्न का एक उत्तर का तरीका देखना। मम्मी पापा मेरे पास नहीं रहते हैं, मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं, बल्कि मैं उनके पास रहता हूं। देखना, जवाब एक ही है, दोनों साथ ही हैं, लेकिन इसमें सिद्ध हो रहा है कि घर किसका है, माता पिता का घर है, उनके घर में मैं रहता हूं, मैं उनका अनुयायी हूं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनकी सेवा करता हूं। मेरा बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन किसका है, माँ बाप का। तो पहले परिचय किसका, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, व्यवहार में हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी पापा मेरे पास रहते हैं। मतलब मेरे पास रहते हैं मतलब क्या हुआ, आप बड़े हो गए, अब मम्मी पापा क्या हो गए, छोटे हो गए। लेकिन होना क्या चाहिए, मम्मी पापा के पास कौन रहता है, मैं रहता हूं। यहां जब परिचय दिया जाता है तो पहले जो उत्कृष्ट ज्ञान में श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, उन ऋषियों का पहले परिचय दिया जाता है, फिर उनके नीचे पहले, फिर पहले नीचे नीचे। और जब जवाब दिया जाता है, ध्यान देना है, जब प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जब प्रश्न पूछने की बारी आती है, तो सबसे छोटा व्यक्ति, जबसे छोटा, जो सबसे छोटा ऋषि है, ऋषियों में कैटेगरी नहीं है लेकिन फिर भी ज्ञान की निष्ठा में थोड़ा सा अंतर है, तो जिसका परिचय सबसे बाद में दिया गया है, वह प्रश्न सबसे पहले पूछता है। ध्यान देना, सबसे, इसलिए यहां भी जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, वो अपने प्रश्न को थोड़ा क्या करें, धैर्य रखें। जो अज्ञानी है या जो थोड़ा, जिसका प्रश्न थोड़ा बचपने वाला है, उस प्रश्न को पहले जवाब दो, बाद में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का जवाब देना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से यह प्रश्न उपनिषद है। अब कहो, प्रश्न उत्तर के माध्यम से क्यों बताया गया है उपनिषद को, क्योंकि देखो ज्ञान की जो दृढ़ता है, ज्ञान की जो मजबूती है, वह प्रश्न उत्तर के माध्यम से यदि ज्ञान अभिव्यक्त किया जाए ना, तो वह ज्ञान बहुत जल्दी हमारे हृदय में बैठ जाता है। यदि इसी ज्ञान को थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक रूप से निबंध की तरह दे दिया जाए, किसकी तरह, निबंध की तरह दे दिया जाए, तो शायद वह ज्ञान बहुत आसानी से नहीं बैठने वाला है। लेकिन यदि यही ज्ञान थोड़ा प्रश्न और उत्तर के माध्यम से भी आपको परोस दिया जाए, तो उसने क्या प्रश्न पूछा था, उसका क्या जवाब था, एक एक अक्षर हमारी बुद्धि में अच्छी प्रकार से बैठ जाएगा। और बुद्धि में बैठना ही इन ग्रंथों का एक तात्पर्य है, लक्ष्य है। ऐसी भाषा को लेकर के ही भगवद गीता भी है, वहां भी क्या है, प्रश्न और उत्तर का ही संवाद है। इन्हीं भाषाओं को लेकर के कठोपनिषद भी है, कठोपनिषद में भी क्या है, प्रश्न और उत्तर ही तो है ना, लेकिन वहां प्रश्नकर्ता एक ही है और उत्तर देने वाले भी कौन है, एक है। और कभी कभी क्या होते हैं, प्रश्नकर्ता भी अलग अलग होते हैं और उत्तर देने वाले भी कौन होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहीं कहीं ये भी होता है, प्रश्नकर्ता भी अलग अलग है और उत्तर देने वाले भी कौन है, अलग अलग है। और जब अलग अलग उत्तर देने वालों में भी जब कोई विवाद खड़ा हो जाए, तो किसी श्रेष्ठ वक्ता के पास जाते हैं और उस वक्ता के पास जाने के बाद उससे अपना समाधान खोजते हैं और उसका नाम डिबेट आदि हो जाता है। तो डिबेट के माध्यम से भी हम किसी भी वस्तु का अच्छी तरह से अवलोकन कर लेते हैं। लेकिन ये बताओ, इन सब परंपराओं का निर्वाह हम क्यों करते हैं? चाहे हम उपनिषद पढ़ रहे हों, चाहे हम क्या पढ़ रहे हों, ब्रह्मसूत्र पढ़ रहे हों। ब्रह्मसूत्र भी उपनिषदों का ही जो संशयित अर्थ है, संशय वाले अर्थ हैं, कहीं कहीं उपनिषदों के वचनों में विरुद्ध बातें आती हैं, तो उन विरुद्ध बातों का समाधान चिंतन कहां किया गया है? ब्रह्मसूत्र में। गीता जी पढ़ रहे हैं स्वाध्याय में, वो कौन सा ग्रंथ है? निदिध्यासात्मक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? निदिध्यासात्मक ग्रंथ है। उपनिषद श्रुति श्रवणात्मक ग्रंथ है। श्रुति के वाक्यों का हमें क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। श्रवण के अनंतर दृढ़ता के लिए, मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मसूत्र का मनन करना चाहिए। श्रवण किसका होवे? उपनिषदों का। मनन किसका होवे? ब्रह्मसूत्र का मनन होवे। और निदिध्यासन किसका होवे? गीता जी का क्या होना चाहिए? निदिध्यासन होना चाहिए। और ये शंकरानंदी गीता तो पूरी तरह से निदिध्यासात्मक ही है। तो निदिध्यासन के बाद स्थिति क्या होगी? ये सब श्रवण मनन निदिध्यासन आखिर हम करते हैं तो क्यों करते हैं? कब इन ऋषियों की चर्चाएं भी करते हैं तो क्यों करते हैं? इनका हमारा लक्ष्य क्या है? कि हमारे ऊपर जो दुख आते हैं, कौन से दुख? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, इन दुखों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, यही तो लक्षण है। देखो दुख आएंगे आएंगे, यदि इस धराधाम पे अवतरित हुए हो तो दुख न आवे ये होना बहुत ही क्या है? मुश्किल है। लेकिन दुख आवे, लेकिन दुखों का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, तो ये किसका प्रभाव है? क्या करके दुख की निवृत्ति हो सकती है? बोलो भाई, क्या प्रभाव है, किसका प्रभाव है? तभी मैं वहां पे एक ग्रंथ ले रहा था, प्रहलाद का चरित्र, लेकिन भागवत का नहीं, विष्णु पुराण का। तो वहां जानते हैं हिरण्यकश्यप ने तमाम तरह का कष्ट दिया किसको? प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। इससे वो थोड़ा डर भी गया। कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जानते हैं क्या है ना? अपने सामने जो दूसरे की प्रशंसा सुन न सके उसका नाम है हिरण्यकश्यप। उसके सामने प्रशंसा वो भगवान अच्युत की करता है, नारायण की करता है, वो सुन नहीं सकता है। इसी वृत्ति का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। इस वृत्ति को देखें तो शायद हम सबके भीतर भी वो असुर बैठा हुआ है। हम अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा सुनना चाहते हैं क्या? नहीं सुन पाते। तो कहीं ना कहीं वो वृत्ति बैठी है। तो उसको तमाम तरह का कष्ट दिया। तो उसने कहा कि आखिर ये किसका प्रभाव है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? मैंने तमाम दुख दिए, जहर पिलवाया, क्या क्या करवाया, पहाड़ सिगराया, क्या किया। कोई मंत्र की सिद्धि है या तू जन्मजात सिद्ध है? कोई व्यक्ति जन्मजात ही असंग रहता है, किसी किसी का एक स्वभाव होता है। अब कोई व्यक्ति माद में मंत्र से सिद्ध हो जाता है। तो प्रहलाद जी महाराज बहुत सीधी सी बात कहते हैं, न मंत्रादिकम तात है पिता, मंत्र आदि से मैंने सिद्धि नहीं पाई है, न जन्म से मुझे कोई सिद्धि मिली है। जैसे सबका जन्म होता है ना, वैसे मेरा भी जन्म हुआ है। कई देखो महापुरुष हैं, स्वाभाविक प्राकट्य होता है, हम लोग भी गर्भ से ही जन्म लिए हैं। मेरा भी जन्म किसी माँ के गर्भ से हुआ है, अनवरत हम पले ही पले हैं। ये तो सामान्य प्रभाव है, जिसके हृदय में अच्युत का वास है। ध्यान देना, जिसके मन में किसका वास है? अच्युत। अच्युत कौन है? भगवान विष्णु। हाँ, ध्यान देना, आत्मा ही है। यदि विष्णु भगवान कहे ना तो आपको विष्णु का एक रूप दिखाई दे जाता है, चार भुजाधारी है। कल ही मैं बताया था, ये सब परमात्मा के माइक स्वरूप हैं। कौन से स्वरूप हैं? वास्तव में उनका ऐसा रूप नहीं है, लेकिन ऐसा रूप दिखता है। असली उनका रूप कौन है? अच्युत, जो अपने स्वरूप से जगत में परिवर्तन अनेक, जिसके स्वरूप के ऊपर जगत इतना परिवर्तित होता हुआ भी जिसके स्वरूप में जरा सा भी भेद न होवे, जरा सा भी अंतर न होवे, उसका नाम है अच्युत। देखो मिट्टी है, मिट्टी से घड़े बनाते हो, लेकिन फिर भी मिट्टी के स्वरूप में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? भेद हो जाता है, गोल नकीर हो जाता है। लेकिन एक शीशा है, क्या है? एक शीशे है। शीशे के ऊपर कितनी लाल पीली नीली तस्वीरें आती हैं, चली जाती हैं, दौड़ता हुआ आता है, स्थिर होता हुआ आता है, लेकिन अनेक रूपों वाला शीशा दिखते हुए भी शीशे के अपने स्वरूप में, मिरर के अपने स्वरूप में जरा सा भी कोई अंतर आता है क्या? उसी प्रकार से उस परमात्मा के अपने स्वरूप में बिना किसी भी प्रकार का अंतर आए हुए ये पूरे जगत को अपने ही ऊपर अव्यक्त कर देता है, उस परछाई की तरह। उसका नाम कौन है? अच्युत है। तो जिसका मन उस परमात्मा में लगा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है, उसके ऊपर संसार के दुखों का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, ये पक्का सौदा है। ये उपनिषद आज की भी चर्चा इसीलिए की जाती है कि हमारे चित्त की वृत्ति कहां लगी रहे, अपने स्वरूप के अलावा, आत्मचिंतन के अलावा, अनात्म चिंतन में जरा सा भी न जाए, तो बता दे दुख कैसे दूर हो जाएंगे। ध्यान देना, दुख कैसे दूर हो जाएंगे यदि मन वहां नहीं जाएगा तो? प्रश्न हुआ ना, बाहर की परिस्थितियों को बिना बदले हमारे मन का दुख कैसे शांत हो जाएगा? अच्छा आप ये बताओ, हमारा दुख बाहर की परिस्थितियों से है या बाहर की परिस्थितियां हमारे मन में आती हैं तब दुख होता है? देखना, बाहर की कोई परिस्थिति आपको दुख नहीं देती है। अभी मान लो थोड़ी समय के लिए पेरिस में हमला हुआ है, नहीं? अब कोई व्यक्ति गांव का है जिसने टीवी ट्रांजिस्टर कभी सुना नहीं है, अब बताओ उस हमले के बावजूद भी उसका चित्त दुखी या सुखी क्या होगा? मेरे बता दो, कुछ नहीं होगा ना, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका चित्त ने उस विषय को अपना मन में जगह नहीं दिया। तो ऐसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, जो अध्यात्म चिंतन में डूबा हुआ व्यक्ति है, उसकी चित्त की वृत्ति अपने स्वरूप में इतनी डूबी रहती है, आत्मचिंतन में इतना तन्मय रहता है, इतना तत्पर रहता है, उसको अनात्म चिंतन के लिए, संसार के किसी विषय पदार्थ के लिए, पदार्थ के चिंतन के लिए जरा सा अवसर ही नहीं मिलता। और उस अवसर के मना मिलने से उसको उस परिस्थिति से होने वाली सुख अथवा दुख का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। आपने सुना होगा, एक श्रीधर स्वामी हुए हैं, श्रीधर स्वामी, इन्होंने भागवत पे, महाराष्ट्र के हैं कि साउथ के हैं? श्रीधर स्वामी महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने भागवत पे टीका लिखी है, वो महाराष्ट्र के हैं। तो कहते हैं कि वो शुरू में तो कहते हैं बड़े मूर्ख ही थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जब भागवत पे टीका लिखना शुरू किए तो उनकी माँ उनको भोजन देती थी, और भोजन देती थी बिना नमक का ही दिया करती थी। अब भोजन किया करते थे बेचारे, तो जिस दिन ग्रंथ लिख गया पूरा हो गया होगा तो उस दिन फिर माँ ने भोजन दिया, जैसे भोजन दिया और खाया, का माँ इसमें तो नमक है ही नहीं, माँ इसमें नमक डाली नहीं तूने। तो माँ ने कुछ नहीं पूछा, बेटा तेरा पुस्तक जो लिख रहा था वो पूरी हो गई क्या? कहेंगे हाँ माँ पूरी हो गई। तो कहा तभी तुम्हें नमक का ध्यान आया, ध्यान देना, तभी तुम्हें नमक का ध्यान आया, मैं बिना नमक का रोज ही तुम्हें भोजन दिया करती थी, लेकिन तू उस पुस्तक के लिखने में इतना तन्मय था कि तुम्हें बाहर के रस का, रसी नहीं, पांचों जो विषय है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों विषयों का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। तेरी चित्त की वृत्ति दिन रात उसी चिंतन में डूबी हुई थी, इसलिए तुम्हें उससे होने वाला सुख और दुख दोनों से तुम क्या रहा, निर्लिप्त रहा। तो अपने चित्त की वृत्ति को उस अच्युत में, उस परमात्मा में, उस आत्मा में इतना डुबो दो कि हमारे चित्त में जरा सा भी संस्कार न रह जाए कि संसार के किसी भी विषय भोग में जरा सा भी सुख है। यदि जरा सा भी संस्कार रह गया न, तो कभी न कभी वो छोटा सा संस्कार आज भले नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन 10 साल के बाद वही संस्कार हो सकता है एक वृक्ष बनकर के खड़ा हो जाए। इसलिए शुरू में कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं है, उसके भीतर वो संस्कार पड़े हुए हैं। अब बाहर की जैसी परिस्थिति आती है तो छोटा से छोटा संस्कार भी क्या बन जाता है, वृक्ष बन करके हमें संसार में डुबा देता है, संसार में हमें फंसा देता है। तो अपने चित्त की वृत्ति को उस परमात्मा में इतना डुबो दो कि बाहर के विषयों का न प्रशंसा सुनो, न क्या सुनो, निंदा सुनो, तो न उससे होने वाला आपको सुख होगा और न दुख होगा। क्या करता महाराज, चिंतन करने से नुकसान भी क्या है? आप कह सकते चिंतन करने से नुकसान भी क्या है? कहा भाई, बाहर के विषयों का चिंतन करने से क्या है, नुकसान ही नुकसान है। हाँ, वही कहते हैं, अन्य शामियो न पापानी चिंतित आत्मनो यथा। जिसे हम अपने पाप का चिंतन करते हैं क्या? जो हम अपने पाप करते हैं उसका कभी चिंतन करते हैं क्या? ऐसे जैसे हम अपने पाप का नहीं चिंतन करते, वैसे हम दूसरे के भी पाप का चिंतन न करें। तो जब पाप का चिंतन नहीं करेंगे तो पाप आएगा क्या? बोलो भाई, जिसका आप चिंतन करोगे मन में उसी का क्या बनेगा, संस्कार बनेगा। और जिसका संस्कार बनेगा मन उसी कर्म के फल को भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। अपने महाराज त्यागमूर्ति जी महाराज बहुत बढ़िया बोलते हैं, दूसरे की बुराई का चिंतन करना शुरू कर दोगे ना, तो दूसरे के भीतर जो बुराई है ना, वह बुराई तेरे भीतर ही आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। इसलिए हमें दूसरे की बुराई का चिंतन करना नहीं है। तो कहो महाराज, बुराई का चिंतन न करें, लेकिन भलाई का चिंतन तो करें, नहीं करें? क्यों भाई, भलाई का तो करें? कहते हैं भलाई भी बुराई है। भलाई भी क्या है, नहीं समझ रहा। जिसे आजकल बड़ा एक डिबेट चल रहा है, अच्छा आतंकवाद है, बुरा आतंकवाद है, क्यों भाई यही चल रहा है? तो आतंकवाद अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है क्या? बुरा ही होता है ना। तो चाहे जो भी कर्म होवे, जो कर्म जन्म खड़ा कर देवे, वह कर्म बुरे ही होते हैं। क्या है, जो कर्म आपको जन्म खड़ा कर देवे, वह चाहे कर्म कौन से होवे, अच्छे होवे, चाहे कर्म क्या होवे, बुरे होवे, जिसको आप अच्छा बुरा कहते हो, वह दोनों ही कर्म यदि जन्म खड़ा कर देते हैं तो वह कर्म भी आपका क्या है, बुरे कर्म है। इसलिए शास्त्र में पुण्य को भी पापी बोला गया है। जिस पुण्य कर्मों के बल से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाने के बाद उसका पुण्य फल भोगता है, और बाद में वहां से फिर से उसको वापस आना पड़ता है, तो जन्म खड़ा किया नहीं किया, और दुख दिया नहीं दिया, तो जिन कर्मों से तुम्हें दुख की प्राप्ति हो जाए वह कर्म क्या है, बुरे ही बुरे होते हैं। इसलिए मैं न दूसरे के पाप का चिंतन करता हूं, न मैं दूसरे के पुण्य का चिंतन करता हूं। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई, है नहीं? दूसरे का पाप, दूसरे का क्या है, पुण्य। वास्तव में दूसरे का न कोई पाप है, न दूसरे का क्या है, पुण्य है। भी बता दूंगा आपको, आपकी धारणा है, आप एक ही घटना घटित होती है, एक ही घटना को एक दृष्टि से देखोगे तो क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, और उसी घटना को दूसरी दृष्टि से देखोगे तो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो बाहर की घटना ना अच्छी है, ना बाहरी घटना क्या है, बुरी है। आपकी दृष्टि में देखने का तरीका क्या है, देखने के तरीके से घटना क्या हो जाती है, पाप और पुण्य हो जाती है। तो यहां बताया कि जो व्यक्ति दूसरे के न पाप का चिंतन करे न दूसरे के पुण्य का चिंतन करे तो उसके भीतर वो संस्कार नहीं आएगा, और संस्कार न आने से उस संस्कार से होने वाला न सुख होगा न उसको क्या होगा दुख की प्राप्ति होगी। तो आप अपने भीतर के सारे संस्कारों को क्या कर दो, हटा दो। और इसी को यहां बताया भी जाता है प्रश्न उपनिषद के बाद में मुंडक आएगा, कौन सा आएगा मुंडक। प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण भाग है, दोनों एक ही वेद के हैं। कौन से वेद के हैं, अथर्ववेद के हैं दोनों। आपने भी पढ़ा ना ईश कौन से वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद। कौन है वो भी मंत्रवाद, शुक्ल के बाद कौन आया ओ, ईश के बाद कौन आया केन। केन किसका है, सामवेद तलवकार शाखा से, ठीक ना तलवार। इसके बाद साम के बाद क्या आया, कठ आया। कठ भी कहां से है, यजुर्वेद से है, ऐसा कृष्ण यजुर्वेद से है साम। कौन कठ है, कठ के बाद आ रहा है आपके पास से प्रश्न उपनिषद। इस प्रश्न उपनिषद में भी मतलब अथर्ववेद में भी जिस शाखा का उपनिषद होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग। तो ये जो प्रश्न उपनिषद है ब्राह्मण भाग की है, और जो मुंडक है वह कौन सी भाग की है, मंत्र भाग की। उसमें यही बताया गया है भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये सारे उपनिषदों का एक ही निचोड़ है। आज हम लोग सारे उपनिषद पढ़ते हैं, 11-11 पढ़ लेते हैं, और तब भी हमारी निष्ठा एक पे भी नहीं बन पाती है, यथार्थ ही नहीं है। हम 11 क्या 28 पढ़ लेते हैं, और महाराज मंगा लेते हैं 128 वाला उपनिषद मंगा दो वो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी निष्ठा एक पे भी नहीं बन पाती है। अब पहले जो ऋषि जाता था ना, जिस शाखा का ऋषि होगा उसी शाखा वाले आचार्य के पास जाएगा, और जीवन में एक ही उपनिषद पढ़ेगा, और एक ही उपनिषद के पढ़ने के बाद एक ही उपनिषद में उसकी ज्ञान की निष्ठा हो जाती थी, क्योंकि उसके अंदर ने जो ज्ञान की योग्यता की शर्त थी वह तीनों शर्तों को वह पालन करता था। तीन शर्त पहले बता दिया, क्या क्या है, तपसा ब्रह्मचर्य अश्रद्धया, ये तीन ही शर्त हैं। तपसा तप करो, क्या हुए जीवन में तप। दूसरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म का चिंतन, वो तो ब्रह्मचर्य है ही है, क्योंकि उसी चिंतन के बाद तो दुनिया का सारा चिंतन आ जाता है, स्त्री चिंतन अथवा पुरुष चिंतन से रहित होना चित्त की वृत्ति, क्योंकि उसी चिंतन के बाद क्या जाता है हजार चिंतन हो जाता है। वो ऐसा वृक्ष है स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री का, यदि चिंतन करो तो दुनिया का सारा ख्वाब उसी में डिपेंड हो जाए, घर होगा फिर बंगला होगा फिर सोफा होगा फिर गाड़ी होगी फिर कपड़ा होगा फिर ये होगा, उसी चिंतन के बाद सारा पेड़ तैयार हो जाता है। इसलिए उस चिंतन को तो मेन चिंतन किया है। एक बताया था ना वो कौन सा ग्रंथ था, दुर्वासना प्रतिकार दशकम, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वहां एक श्लोक मैंने भर्तृहरि का उसमें कोटेशन में दिया है कि स्त्री के लिए पुरुष पुरुष के लिए स्त्री में पांचों विषयों का समावेश है। शब्द सबसे प्रिय वाणी किसकी लगती है बताओ, अब लोग जानते जानते हो मधुर वाणी किसकी लगती है, स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों विषयों का समावेश है। किसमें मान लिया जाता है, पुरुष के लिए स्त्री में और स्त्री के लिए पुरुष में। तो अपनी इंद्रियों को चित्त की वृत्ति को इन विषयों से हटा करके पूरी तरह कहां रखना है, अपने स्वरूप में रखना है, तो निश्चित ही है कि आप मतलब आपके जीवन का लक्ष्य वह परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा दूसरा कोई विषय आपको दिखाई न देवे तो आप ब्रह्मचर्य हो। और उस लक्ष्य को तो देख लिया, लेकिन जब तक किसी पे श्रद्धा नहीं करोगे तब भी हमें उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो महाराज जी कैसे हम इन संसार के विषयों का चिंतन हटावे, तो कहा भाई सो हम, अरे वही तो मैं हूं। कौन हूं, जिसके गुणों का मैं चिंतन कर रहा हूं अथवा जिसके पापों का मैं चिंतन कर रहा हूं वही तो कौन हूं, मैं ही हूं। तो जब मैं वही हूं तो मन से भी वाणी से भी अथवा कर्म से भी दूसरे को नहीं मैं कष्ट देता हूं। तो जब मैंने कष्ट ही नहीं दिया दूसरे को, ठंड ना, तो जब कष्ट ही नहीं दिया तो कष्ट वाला बीज भी मेरे अंकुर हृदय में नहीं फूटा। तो कष्ट वाला बीज अंकुर में नहीं फूटा, पाप का बीज हमारे हृदय में नहीं फूटा, तो उससे जो वृक्ष कटीला वृक्ष पैदा होगा वो कैसे पैदा होगा? नहीं पैदा होगा ना भाई। एक कहावत है क्या, बोए क्या बीज बबूल का आम कहां से होए। यदि बबूल का बीज बोओगे तो आम कहीं से होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आम को खाने के लिए क्या बोना पड़ेगा? आम का बीज। अब बबूल का बीज बोओगे तो जो आप बोओगे वही तो काटोगे, नहीं काटोगे। तो यदि आपने दूसरे का क्या किया है, कर्म से मन से वाणी से दूसरे को आपने दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, दूसरे के हक को क्या किया है, छीना है, तो आप सोचो मेरा हक न छीना जाए, ये होने वाला है ही नहीं। तो जब मैंने यह काम किया नहीं, जब मैंने दूसरे को दुख बांटा ही नहीं है, तो मेरे हिस्से में दुख आने वाला है भाई। तो यहां तीन चीजें बताई, ध्यान देना। सुखी होने के तीन तरीके, अपने चित्त को उस परमात्मा में लगा दो, बस दूसरे का चिंतन होवे न। दूसरा चीज क्या है, दूसरे के न पुण्य का चिंतन होवे न दूसरे के पाप का चिंतन होवे। तो न पुण्य पाप का चिंतन न होने से उसका संस्कार नहीं बनेगा, और संस्कार न बनने से आपका अगला जन्म नहीं होगा, और जन्म न होने से भी आप क्या हो जाओगे, सारे जन्म और जन्म के बाद होने वाले सारे दुखों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। तीसरा, यदि ये भी काम नहीं कर सकते हो तो कर्म से मन से वाणी से जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है उसको ही कष्ट भोगना। कई लोग दिखते हैं कष्ट नहीं देते, लेकिन ध्यान देना, भले शरीर से कष्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन मन से, यदि उनके मन में गलत धारणा है तो उसका भी फल उनको भोगना। अब बल्कि मैं तो कहता हूं कि शरीर का किया हुआ कर्म का फल हो सकता है कम पड़े, लेकिन मन के किए हुए शरीर से किए हुए कर्म का फल बने या न बने इसमें कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी बन सकता है। जैसे ज्ञानी लोग शरीर से कर्म करते हैं लेकिन मन से कर्म नहीं करते, तो उनके ऊपर उन कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मन से किए हुए कर्म का फल पक्का सबको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मन से भी किसी को कष्ट न दो। तो कर्म से, मन से और वाणी से, कहां से, वाणी से, जो व्यक्ति दूसरे को कष्ट देता है उसी को ही कष्ट भोगना पड़ता है। हमने किसी को कष्ट नहीं दिया इसलिए हमें भी कष्ट भोगने की आवश्यकता है ही नहीं। तो कैसे नहीं कष्ट दिया, दूसरा व्यक्ति बुरा कर रहा है तो उसके प्रति तो कष्ट देने की वृत्ति आती है। कहते वही तो मैं हूं, जो मेरे को कष्ट दे रहा है वह रूप भी किसका रूप है, सो हम, वही तो मैं हूं। इतना पापम इच्छामि, मैं किसी का बुरा चाहता ही नहीं हूं, किसी को किसी के लिए पाप करने की इच्छा करता ही नहीं हूं, न मैं किसी का बुरा बोलता हूं, सब मैं एक परमात्मा को देखता हूं, और उसके प्रभाव से मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख है ही नहीं। तो यदि हम भी संसार के सारे दुखों से बचना चाहें तो क्या करना, पहले अपने आप का निश्चय करना। क्या निश्चय करना है, अहम ब्रह्मास्मि सो अहम। अब बाद में निश्चय करना सर्वम खल इदम ब्रह्मा। ये दो युक्तियां हैं। हम पहले गलत करते हैं, हम पहले संसार को ब्रह्म देखना चाहते हैं लेकिन हम अपने आप को ब्रह्म देख नहीं पाते। जबकि होना क्या चाहिए, पहले अपने बारे में निश्चय करो कि हम क्या हैं, ब्रह्म हैं, ऐसा अनुभव करो। अनुभव करने के बाद फिर आप संसार के सब प्राणियों में किसकी धारणा करना, ब्रह्म की धारणा करना, ब्रह्म की वो करना, सारा संसार ही परमात्मय है ऐसा निश्चय करना, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। उन्होंने एक निचोड़ बताया, तत्कर्म यत्न बंधाय। वास्तव में कर्म वही है जो आपके बंधन का हेतु न बने। जो कर्म आपके बंधन का हेतु बनता है वह कर्म कर्म ही नहीं है। वह कर्म जो कर्म देखो दो तरह का कर्म होता है। एक कर्म आपके अंदर के पाप को साफ करता है और दूसरा कर्म क्या करता है, अंदर के पाप को साफ करके अपना संस्कार भी डाल देता है। ठीक है ना। तो एक बुराई तो जाती है लेकिन दूसरी बुराई आ जाती है, तो वो कर्म नहीं कहा गया। कर्म वह कहा गया जो अंदर से अनात्म कर्मों को क्या करे, साफ तो करे लेकिन अपना कोई संस्कार न डाले, तो उस कर्म का नाम क्या है, कर्म। तो जो कर्म क्या करे, बंधन में न डाले। असा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो आपको क्या करे, बोलो भाई, मुक्त कर दे। और दुनिया की विद्याएं, ये रोटी दाल कमाने की विद्या है। किसकी विद्या है, रोटी दाल कमाने की विद्या है। और दूसरी विद्या किसकी है, रोटी दाल कमाने की विद्या है, दूसरे को क्या बना करके अपना उल्लू सीधा करने की विद्या है, वो नहीं बोलूंगा। अपना उल्लू सीधा करना, दूसरे को क्या बनाना है, बेवकूफ बना करके अपना उल्लू सीधा करना, इसकी विद्या है। तो ये विद्या से हमारा परमात्मा ही सिद्ध होने वाला है। विद्या वास्तव में यही है जो व्यक्ति को क्या करे, मुक्त कर देवे। और किससे मुक्त कर देवे, संसार के किसी भी संस्कार से मुक्त कर देवे। उसके चित्त में कोई भी संस्कार रहने नहीं पावे, संसार बलात् किसी विषय का चिंतन उसके मन में होवे न, निष्प्रिय रहे, असंग रहे, निर्लिप्त रहे। वह वास्तव में ज्ञान ही ज्ञान है। इसके अलावा जितने भी कर्म करते हो वह सारे कर्म आपका परिश्रम मात्र है, उससे कुछ सिद्ध होने वाला है ही नहीं। ठीक है बहुत कर्म कर लोगे, बहुत ज्यादा धन पद प्रतिष्ठा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन उससे परिश्रम ही मिलने वाला है, कुछ भी आपके काम आने वाला है ही नहीं। और उस विद्या का अलावा और जितनी विद्याएं हैं वह शिल्प नैपुण्यम, वह आपके क्या है, निपुणता है, शिल्प कला है। एक किसी ने किसी के कहने का एक क्या होता है, बड़ा ढंग होता है। वाग बैखरी, भगवान शंकराचार्य ने कहा, शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम यदवत भुक्तये न तू मुक्तये। विद्वानों की विद्वता है कि शब्दों की झड़ी लगा देते हैं, शब्दों का इतना बढ़िया तारतम्य में बैठाते हैं, है ना। प्रवचनों की स्टाइल किसी किसी की ऐसी होती है, एक कोटेशन की तरह नोट करने वाला होता है। मतलब नहीं, मतलब उनकी अपनी निष्ठा पे नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रवचन की स्टाइल देख, तदुन सागर जी महाराज का देखना, एक उनके छोटी छोटी क्या है, कविताओं के रूप में, चिता में जाने के पहले तुम चिंतन कर लो, मतलब इस तरह से एक शब्दों का एक तारतम्य ऐसा बैठा देते हैं कि व्यक्ति को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर लेता है। लेकिन प्रभावित करने वाले शब्दों के साथ साथ है। हम तो कहते दुनिया प्रभावित हो या ना हो उसकी चिंता करना क्या कर देना, तुम छोड़ देना, लेकिन तुम प्रभावित हो जाओ, हम प्रभावित हो जाएं। जो शब्द हम बोलते हैं दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं, उन शब्दों से मेरा अपना मन प्रभावित हो जाए, हमारे मन में उसकी निष्ठा प्रबल हो जाए, तब जानना हमने उस ज्ञान को अर्जित किया, अन्यथा हमारा ज्ञान भी क्या हो जाएगा, किसी काम आने वाला है ही नहीं। अंतिम समय में ज्ञान क्या हो जाएगा, छूट ही जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय में न जो संस्कार बना रहेगा न उसी की स्थिति बनी रहेगी। ये जो अभी हमारी सारी तैयारी चल रही है न, ये अभी के लिए नहीं तैयारी चल रही है, किस समय, मृत्यु के लिए तैयारी चल रही है। अभी भी थोड़ा बहुत काम आता है, जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती ना, बताया था ना, धन हानि हो गई, शरीर में क्या आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, मृत्यु का सामना करना पड़ गया, पति पत्नी ने हमारा अपमान कर दिया, समाज में लोगों ने क्या कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, उस समय यदि आपका चित्त शांत है, ध्यान देना, तो समझना आपकी गति साधना की बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो निश्चित ही आप मृत्यु के काल में जो फाइनल परीक्षा दोगे उसमें आप पास हो जाओगे। यदि अभी छोटी छोटी परीक्षाओं में भी हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो मृत्यु के काल में तो पक्का क्या हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। लेकिन यदि क्या ये मंथली टेस्ट है, जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें भी पास हो गए तो मृत्यु के समय में आप कभी फेल है? यदि इन परीक्षाओं में हम फेल हो गए तो सही बताऊं, मैं तो अपना देखता हूं कभी न कभी फेल हो जाता हूं, मैं तो सही बताऊं। कल घूमने जा रहा था वहां तो चौकीदार ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? कहा भाई रोज जा रहा हूं सैर करने, मांगने तो नहीं जा रहा मैं, तुम मांगने तो नहीं जा रहा है? मतलब महात्माओं को भिखारी समझते हैं, चौकीदार भी भिखारी समझ रहा है, मांगने तो नहीं जा रहे हो? हमका भाई नहीं मांगूंगा, मैं किसी से घूम के आऊंगा। लेकिन एक झटका अंदर तो मतलब भिखारी महात्माओं को ये लोग क्या समझते हैं? फिर मैंने सब उसका क्या दोष है बेचारा, भिखारी ये कपड़ा पहन करके लोग मांगते ही रहते हैं, तो इसलिए उसने यथार्थ ही बोला है, यथार्थ को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना भी चाहिए। फिर घूम के आ गया, क्या करता। लेकिन कहने का मन में दुख तो आया ना, तो जरा सा भी दुख आवे न तो समझना परीक्षा के समय, कौन सी परीक्षा, मृत्यु वाली परीक्षा, जब सब छूट जाएगा, न जाने लोग क्या क्या बोलता जाएगा, लेकिन फिर भी मन क्या रहे, शांत रहे, तो हम पास हो गए। आज सामान्य रूप से थोड़ा इसकी भूमिका लेते हुए मैंने बता दिया, क्योंकि आकस्मिक एक दिन का प्रवचन था, कल से महाराज जी आएंगे और इसके बाद गीता जी चलेगा। ओम शांति शांति शांति।